হে না প্রভু কোথায় গেলা আচার্য ঠাকুর, হে না প্রভু কাহা মোর স্বরূপ রূপ কাহা সনাতন, কাহা মোর কাহা দাস রঘুনাথ পতিত পাবন, কাহা মোর ভট্ট যুগ কাহা কবিরাজ, কাহা মোর একা কালে কোথায় গেলা গৌর নটরা, একা কালে পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব, পাষাণে গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথায় গেলে পাব, গৌরাঙ্গ গু শেষব সঙ্গীর সঙ্গে যে কইল বিলাস, সে সঙ্গ না পাইয়া কান্দে নরতম দাস, সে সঙ্গ না পাইয়া কান্দে নরতম দাস, কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে, হরে জয় বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর, কৃষ্ণ কালী দাস বৈষ্ণব ঠাকুর জয়, কৃষ্ণ কালী প্রভুপাদ 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 প্রভুপাদ, জয় বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য অষ্টোত্তর শতশ্রী শ্রীমৎ डिवाइन ग्रेस ऑफ हरि चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाताचार्य बीबीटी प्रतिष्ठाताचार्य डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशी श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। श्री श्री गौरनीता की जय। कृष्ण बलराम की जय। राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। श्री कृष्ण कालियादास तिरोभाव महामहोत्सव की जय। श्री चैतन्य चरितामृतम की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि ओम। अज्ञानातिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशयी नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। चैतन्य चरितामृत क्लास पहले बोले चैतन्य चरितामृत व पहले काला कृष्ण दास के बारे में बोले। काला कृष्ण बारे में थोड़ा सा बोल के फिर क्लास स्टार्ट करते। तो आज काली कृष्ण दास के तिरुवाप तिथि में काला कृष्ण और काली कृष्ण दोनों में अंतर है। काला कृष्ण दास वो है जो चैतन्य महामेश्वरी जो नित्यानंद प्रभु के साथ सॉरी जो चैतन्य महाप्रभु के साथ दक्षिण भारत की गश्त में साथ में गया था वो है कौन? काला कृष्ण दास। वो नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु के साथ भेजा था उसको, वो जाकर फिर दक्षिण भारत में भट्टारी लोग के साथ वो भट्टारी लोग तांत्रिक लोग उसको तंत्र मंत्र करके उसको एक सुंदर लड़की देखाकर तो कह के लड़के के शादी करा देंगे और तुमको घर दिख रहे मकान दिख रहे जितने संपत्ति तुमको मिलेगा, ये बाबा के साथ क्यों घूम रहा है छोड़ो इसको। तो लड़की और धन के लोभ में चैतन्य महाप्रभु को छोड़कर भट्टाहरी लोगों के साथ रहना लग गया था। वो काला कृष्ण दास है, वो अलग है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य टीका में लिखते हैं कि काली कृष्ण और काला कृष्ण दोनों अलग अलग है, लेकिन काली कृष्ण वो है नित्यानंद प्रभु की भी अत्यंत अंतरंग पार्षद है, चैतन्य महाप्रभु की भी अति प्रिय है। कृष्ण लीला में जो द्वादश गोपाल कृष्ण के जो प्रिय सखा थे उनमें से लवंग सखा जो था, लवंग नाम के सखा था कृष्ण लीला में, वही गौरलीला में काली कृष्ण दास के रूप में अवतीर्ण हुआ था काटवा में। काटवा से वो जानते हैं जहाँ पर चैतन्य महापुरुष संन्यास लिए थे, काटवा में, काटवा से लगभग 2 माइल दूरी पर आकाई हाट गांव है। आकाई हाट गांव में वो जो वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में आता है वहीं पर उनकी आविर्भाव हुआ था। और वो उनके घर के सामने एक कुंड भी है, नूपुर कुंड है, रघुनंदन ठाकुर के जब नृत्य किए थे तो उनके नृत्य के समय में उन्होंने नूपुर छिड़क कराकर वहाँ जाकर स्थान पर गिरा था। रघुनंदन ठाकुर तो कहाँ पर शिखंडवासी है, शिखंडवासी है, वहाँ से वो नृत्य किए थे। वहाँ से वो एक चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे अभिराम ठाकुर हैं, अभिराम ठाकुर जानते हैं, वो सीधाम सखा के अवतार थे हैं। तो उन्होंने जब नृत्य कर वो गए थे रघुनंदन को दर्शन करने, क्यों रघुनंदन ठाकुर इतनी प्रिय शुद्ध भक्त के रूप में उनके ख्याति फैल गया था कि बचपन से उनके हाथ से कौन खाए लड्डू खाए थे भगवान ने, तो इसलिए रघुनंदन ठाकुर जो जो शुद्ध भक्त जो बोलते थे उसको जाके प्रणाम करते थे। लेकिन वो इतनी प्रभावशाली थे, वो जिसको प्रणाम करते थे यदि सालग्राम नहीं है तो वो शिला चूर चूर हो जाएगा है। यदि कोई विग्रह सही थे, सही से इनको अर्चा विग्रहों को प्रतिष्ठित नहीं किया गया तो अर्चा विग्रह तोड़ के तुरंत चूर चूर होकर गिर जाएगा, ऐसे उनके प्रभाव था। वो श्रीराम सखा राधारानी के बड़े भाई हैं, कृष्णलीला में थे। तो इसलिए उन्होंने जब रघुनंदन के बारे में सुना थे वो गए थे उधर उसको परीक्षा करने, रघुनंदन क्या शुद्ध भक्त बोल रहे सब लोग। तो उन्होंने गए तो उनके पिताजी मुकुंद दास रघुनंदन को छुपा दिए थे घर में, उनको बोले नहीं हमारा रघुनंदन नहीं है, जानते थे सब, डर गए ये आ रहे हैं प्रणाम करने। कई बच्चों को ऐसे मार चुके नित्यानंद प्रभु के 11 बच्चों को इन्हें प्रणाम के लिए समाप्त कर दिए थे हैं। बाद में उन्हें जो वीरचंद्र प्रभु ठाकुर आए तो वो विष्णु तत्व में थे, इसलिए उन्होंने उनको प्रणाम करने भी वो खिल खिल के हंसने लगे, तब डिक्लेयर कर उनकी स्तुति करने लगे रघु ये श्रीराम सखा के जो अवतार थे अभिराम प्रभु हैं। वो बहुत फिर वो मैं कहा मत श्री पिंग के बारे में बताना है। तो इसलिए वहाँ जो नृत्य के तो लेकिन रघुनंदन को पता चला, वो दुखी होकर वापस जा रहे थे, रघुनंदन को पता चला कि आए थे मुझे दर्शन करने के लिए, वो घर से निकल कर बाहर से पीछे से भाग भाग के उनके पीछे पीछे आ गए, बोले हे मैं रघुनंदन हूँ इधर हूँ। तो इसलिए अभिरामपुर ठाकुर फिर घूम के आए ताकि देखिए तुम रघुनंदन हो, प्रणाम किए लेकिन कुछ नहीं हुआ। रघुनंदन और नृत्य, रघुनंदन नृत्य किए तो वो दोनों मिलकर नृत्य जोर से नृत्य किए, जो वहां नृत्य करते थे तो उनके पैर का नूपुर छिड़क का आकर यहाँ पड़ा आकाई हाट में है। ये जो कालिय कृष्णदास उनके घर के सामने वो नुपुर कुंड है, उसे वहां पर नुपुर गिरा था। तो इसलिए कालिय कृष्णदास इसलिए आपको कि ये द्वादश गोपाल में से कौन सा गोपाल थे, लवंग है, लवंग सखा थे। और इनके बारे में विशेष वर्णन कहीं मिलता नहीं, लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के संकीर्तन आंदोलन में एक सक्रिय सदस्य थे। हैं संकीर्तन आंदोलन को संघ विस्तार आगे फैलाने के लिए नित्यानंद प्रभु के अंतर्हित होने के बाद जानवा माता का जो कटवा गए थे उनके साथ भी इन्होंने प्रचार कार्य में आगे उनको सहायता किए थे। और इनकी वंशधर आज भी है, कहा जाता है काली ये कृष्ण कालियादास उन्होंने वृंदावन में आकर अंतिम समय बिताए थे। वृंदावन में आकर यहाँ पर यहाँ रहते थे समुना किनारे धीर समीर के, वहाँ से काली कृष्ण की ही समाधि है, वहाँ जब आप जाओगे 64 महंत के समाधि स्थल वहाँ पर काली कृष्ण की समाधि है। तो काली कृष्णदास वृंदावन में ही शरीर त्यागे थे व नित्यलड़ा में प्रवेश कर गए थे। तो इसलिए काली कृष्ण के बारे में संक्षेप में बोल दिया। अभी हम चैतन्य चरितामृत के प्रारंभ करेंगे। आज चैतन्य चरितामृत के आदि लीला अध्याय 1 गुरु वर्ग कितना नंबर श्लोक लिखा, 68 नंबर श्लोक। दुई रूपे हय भगवानेर प्रकाश एके तो प्रकाश है आरे तो विलास दुई रूपे हय भगवानेर प्रकाश एके तो प्रकाश हय आरे तो विलास दुई रूपे हय भगवानेर प्रकाश एके तो प्रकाश हय आरे तो विलास। हाँ कोई माता है हरे कृष्ण। दुई रूपे दो रूप में हय हे भगवान र भगवान के प्रकाश प्राकट्य एक एक में तो निश्चय ही प्रकाश प्राकट्य हय हे और अन्य में तो निश्चय ही विलास लीलाओं में रथ। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद, भगवान अपने आप को दो रूपों में प्रकट करते हैं, प्रकाश तथा विलास। दोहराइए, भगवान अपने आप को दो रूपों में प्रकट करते हैं, प्रकाश तथा विलास। तात्पर्य, भगवान अपने व्यक्तिगत साकार रूप को दो मुख्य वर्गों में प्रकट करते हैं। हे प्रकाश रूप भगवान कृष्ण द्वारा अपनी लीलाओं के लिए प्रकट किए जाते हैं और इनके रूप में इनके रूप उन्हीं के समान होते हैं। जब भगवान ने द्वारका में 16,000 रानियों से विवाह किया तो उन्होंने 16,000 प्रकाश विस्तारों द्वारा ऐसा किया। इसी तरह रास नृत्य के समय प्रत्येक गोपी निकट एक साथ नृत्य करने के लिए उन्होंने एक जैसी प्रकाश रूपों में अपना विस्तार किया, किंतु जब भगवान अपने विलास रूप को प्रकट करते हैं तो वे तब उनके शारीरिक रूप से कुछ न कुछ भिन्न होते हैं। बलराम जी भगवान कृष्ण के प्रथम विलास रूप है और वैकुंठ में चतुर्भुज नारायण रूप बलराम के ही विस्तार है। श्री कृष्ण तथा बलराम के शरीर में केवल इतना ही अंतर है कि शरीर के रंग भिन्न है। इसी प्रकार वैकुंठ में श्री नारायण के 4 हाथ है जबकि कृष्ण के केवल 2 हाथ है। भगवान के जिन विस्तारों में ऐसे शारीरिक अंतर प्रकट होते हैं वे विलास विग्रह कहलाते हैं। तो इस अध्याय चैतन्य चैतन्य की पहला अध्याय की प्रारंभ करने के पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये मंगलाचरण में सबको प्रणाम करते हैं। वंदे गुरुन ईशः भक्तान भक्तावतारकान तत्प्रकाशंश्च तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम्। मैं गुरुओं भगत भक्तों ईश्वर के अवतारों उनके पूर्ण अंश प्रकाशों उनकी शक्तियाँ तथा स्वयं आदि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ। इसके बाद उन्होंने इसकी व्याख्या करते हैं। कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश कृष्ण यही क्षय रूपे करे न विलास। भगवान कृष्ण अपने आपको गुरु भक्त विभिन्न शक्तियाँ अवतारों तथा परिपूर्ण प्रकाश में प्रकट करके विलास करते हैं। ये क्षय रूप एक ही में समाहित है। ये पहले ये मंगल श्लोक है लेकिन श्लोकों को फिर विस्तार से कह रहे किनकी किनकी बारे में ये अध्याय में वर्णन किया जाएगा और इनकी वर्णन के बारे में पहले हो चुके हैं। किसके वर्णन हो चुके हैं? कृष्ण का वर्णन, कृष्ण स्वयं भगवान चतुष्कों की भागवत को भी पहले कहे हैं। जो चतुष्कों की भगवान भगवान ने चतुष्कों की भागवत किसको कहे थे? ब्रह्मा जी को श्रवण कराए थे। इसके बाद उन्होंने गुरु का चर्चा भी कर चुके हैं। गुरु दो प्रकार के हैं, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। ये दोनों की चर्चा भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी कर चुके हैं। इसमें भगवान के भक्त 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 भगवान के शुद्ध भक्त जो गुरु होते हैं तो ये भगवान का ही शुद्ध भक्त हुए बिना कोई गुरु नहीं बन सकता है। शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु कोई भी ये निश्चित रूप में भगवान के शुद्ध भक्त है। पिछले श्लोक में यही कई 2-3 श्लोक पहले इसकी चर्चा हुई है। भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के शुद्ध भक्त दोनों परस्पर को अति प्रिय है। साधारण वो अम्बरीश के उपाख्यान से श्लोक भी यहाँ पर कोट किए थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी। किसको याद है कौन सा श्लोक याद किए थे? हैं आज के श्लोक का ठीक है, 1-2 श्लोक का पहले से कोट किए हैं। साधव हृदय मोहन साधु नांग हृदय तो हम मत अन्य मत अन्यत न जानती नाहंगेभ्य मनागपी है श्लोक कोट किए थे। तो इसलिए ये सब चर्चा हो चुकी, कृष्ण के बारे में चर्चा हो चुकी, गुरु के बारे में चर्चा हो चुकी, भक्त के बारे में चर्चा हो चुकी है। बाकी शक्ति तत्व तो आगे चर्चा होगा, अवतार का चर्चा भी हो चुका पिछले श्लोक का जो था। ये अवतार के भगवान कितने प्रकार के अवतार लेते हैं संसार में? कितने प्रकार के अवतार है भगवान का? 6 प्रकार के अवतार लेते हैं भगवान। जो अवतीर्ण होते हैं भगवान की 6 प्रकार के अवतारों की चर्चा भी हो चुका है पहले। छह प्रकार का अवतार क्या किसको याद है, क्या क्या है? भगवान के सबसे पुरुषा अवतार, फिर गुणा अवतार, फिर लीला अवतार, मनोन्तर अवतार, शक्त्यावेश अवतार, जुगा अवतार, है छह प्रकार के अवतार। भगवान जो अवतार लेते उसका भी चर्चा हो चुका है। तो अभी केवल बाकी है भक्ति का शक्ति, आगे ये शो के बाद में तीन प्रकार के भगवान के जो अंतरंग बहिरंग तटस्थ है शक्ति का आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने आज के श्लोक में विशेष में प्रकाश है कहते कि कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश है। कृष्ण यही छह रूपे करें रविलास प्रकाश और रविलास, ये दो शब्द जो उपयोग किया गया है उसी की व्याख्या आज के श्लोक में विशेष रूप में की गई है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान अपने आप को दो रूप में प्रकट करते हैं, प्रकाश तथा विलास। भगवान के दो रूप में, जब भगवान की यदि एक एक दृष्टि से भगवान जब इस धरा पर अवतीर्ण होते हैं, इनकी एक प्रकार दो प्रकार की रूप धारण करते हैं। एक रूप उनको कहते हैं कि प्रकाश, ये भगवान का प्रकाश है, और दूसरा है विलास। प्रकाश रूप को प्रभुपाद ने कहते कि जो प्रकाश के रूप में था, इसका व्याख्या आगे श्लोकों में सब किए हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। आगे श्लोकों में तो तात्पर्य नहीं है, लेकिन ये केवल इस श्लोकों को व्याख्या करते हैं। प्रकाश और विलास ये आगे कहते हैं। एक ही विग्रह यदि हय बहु रूप आकार तो भेद नहीं एक ही स्वरूप महिषी विवाहे जैसे जैसे कैल रास यहा के कहिए कृष्ण र मुख्य प्रकाश। जिसको प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी लिखे हैं, जब भगवान स्वयं को अनेक रूप में विस्तारित करते हैं, जो अपने अपने स्वरूप में अभिन्न होते हैं, जैसा कि भगवान कृष्ण ने 16,000 रानियों के साथ विवाह करते समय तथा रास नृत्य करते समय किया था, तो भगवान के ऐसे रूप मुख्य प्रकाश प्रकाश विग्रह कहलाते हैं। इसमें कोई भिन्न नहीं होता है, हैं? भगवान स्वयं को जब उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जैसे उन्होंने 16,000 रानियों को शादी किया। कहाँ पर 16,000 रानी को शादी किया? 16,108 रानियां ना द्वारका में। कितने रानी थे भगवान की? विशेष रूप में 16,000 रानी कहाँ शादी किए थे? एक साथ में शादी किए थे कहते हैं। भौमासुर को जब भगवान ने वध किए, भगवान भौमासुर बाजकर नरकासुर भी कहते हैं, प्राग ज्योतिषपुर उसका का राजधानी किसको कहते हैं? प्राग ज्योतिषपुर किसको कहते हैं? अभी गुवाहाटी है, गुवाहाटी शहर जो है आसाम की राजधानी वही है प्राग ज्योतिषपुर। वहाँ पर कामाख्या देवी की मंदिर है, ब्रह्मपुत्र है नद के सामने, नद एस ओ नद है, नदी नहीं है। संसार में सब नद नदी है लेकिन ब्रह्मपुत्र नद है, श्री ब्रह्म वो पुंगलिंग में है, ब्रह्मपुत्र है, उसमें स्नान करने से कोई पुण्य नहीं मिलता है, लेकिन एक ही दिन केवल अशोक अष्टमी के दिन, कई दो तीन केवल साल में है दो तीन दिन तिथि जिस दिन स्नान करने से गंगा स्नान के फल मिलता है, नहीं तो और हर दिन जो स्नान करते उसमें कोई फल नहीं। पानी बहुत सुंदर है, एकदम साफ पानी, और निकला है मानसरोवर से। ब्रह्मपुत्र का नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से। मानसरोवर तो पवित्र जल है, लेकिन फिर भी उसका वो कहानी पुराने में पूरा है, उसको अभिशाप है जो भी है। तो ब्रह्म तो वही उसको कहते प्राग ज्योतिषपुर गुवाहाटी सहराज जो मॉडर्न गुवाहाटी है। और वो नरकासुर व भौमासुर कौन था? भूमि और वराहदेव। वराहदेव और भूमि के संयोग से उसका जन्म हुआ था, इसलिए भगवान का ही पुत्र है। हैं तीनों युग में था, सत्य युग त्रेतया में ठीक था, द्वापर में साधु संत की सेवा करता सब कुछ ठीक था, लेकिन जब हुआ द्वापर यहाँ पर सबका संग किया, सब दुष्ट लोगों के संग किया है, सब जो जरासंध और कंस ये सब दूसरे राक्षसों के संग करके उसका मति बिगड़ गया। इसलिए उन्होंने 16,000 रानियों को सब राजकुमारियों को मैंने 16,000 राजकुमारी अभी भाई तक लड़की को सब बात करके सब छीन लेके रखा था, बंदी बना के रखा था, सबको शादी करना चाहता था है? लेकिन वो कन्या स्वराज नहीं होते थे, बंद करके रखा था जेल में। अब भगवान जो भौमासुर को वध किए अपने पुत्र को ही वध किए, इसलिए कहते भगवान के पास में कोई बात विचार नहीं, अपने पुत्र होने पर भी धर्म संघ स्थापनार्थाय संभवामी जुगे जुगे परित्राणाय साधुनां विनाशाय च उसके काम। दुष्ट होने से अपने पुत्र को भी भगवान वध किए, नरकासुर को वध करके जब ये जेल सब निकाले राजकुमारियों को, तो ये राजकुमारी सब तो आत्महत्या करना चाहते थे कि हमको है, हमको तो ये राक्षस टच किया है, हमको कौन शादी करने वाला है। तो सब लोग इसलिए भगवान श्री कृष्ण को ही कही, आप ही यदि हमको स्वीकार करोगे तो हमें जान रखेंगे, नहीं तो हम सब ये ब्रह्मपुत्र नदी में कूद के शरीर त्याग देंगे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण को बना के नहीं ऐसा करना, आत्महत्या नहीं करना, भगवान सब एक साथ में सबको स्वीकार किए, सभी को अपने पत्नी रूप में स्वीकार किए। लेकिन ये 16,000 रानियों को शादी करके, और पहले तो उनका और भी रानियां थे हैं, और दूसरे जो सब थे 16,108 रानी और दूसरे पहले से बाप में किस को शादी किए, रुक्मणी सत्यभामा लक्ष्मणा आदि नग्न जीती आदि सब दूसरे रानियां थे। लेकिन ये सभी रानियों के नाराज जी ने सोचे कि कैसे भगवान ने इनको प्रसन्न है, सबको कैसे प्रसन्न कर सकते, इतना रानी क्या है, यदि एक रानी के पास एक दिन जाते होंगे, एक रात जाते होंगे, फिर दूसरी रानी के पास दूसरी रात, फिर तो वो टॉर नहाने के लिए कितने दिन लगता होगा, 16,108 दिन के बाद फिर दूसरे 16,800 दिन, कितना एक साल तो 365 दिन, तो कितने कई सालों के बाद फिर एक एक रानी के पास जाते होंगे, ये सोचते थे। इसीलिए उन्होंने एक दिन द्वारकापुरी में जाकर देखना चाहते थे भगवान क्या करते। तो इसलिए नारद मुनि जब गए हैं, भागवत में इसके वर्णन है, कृष्ण बुक में प्रभुपाद जी ने सुंदर वर्णन किया, तो गए तो देखे कि भगवान श्री कृष्ण को देखे रुक्मणी घर, रुक्मणी के घर में महल में नारद जी घुसे है, देखे कि वहाँ क्या कर रहे हैं, रुक्मणी पंखा झेल रही भगवान ने हैं, कुछ अपने मैंने कुछ भोजन कर रहे हैं, बाकी उसके दो सत्यभामा के पास गए, वहाँ देख रहे कि अपने बच्चों को भगवान ने गोद में, सभी रानी के जितनी रानी के घर में गए, सभी रानियों की महल में एक साथ में उन्होंने देखा किसको, कृष्ण को। 16,108 रानियों की महल में प्रत्येक महल में कृष्ण है। नारद जी सब आश्चर्यचकित हो गए। उसी बात को यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, तो प्रभुपाद उदाहरण प्रस्तुत करते कि तो इसलिए ये जो विस्तार है एक ही है, कोई फर्क नहीं है। बात दूसरा कहते कि रास मुक्ति के समय में, रास मुक्ति के समय में भगवान ने भी जितने गोपी इतना कृष्ण बने हैं, बात दो गोपी के बीच में एक कृष्ण, जो रास मंडल में खड़े थे नृत्य कर रहे थे, दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण थे हैं, जितने गोपी इतने कृष्ण, कृष्ण स्वयं को विस्तारित करके उनके साथ नृत्य करते थे। और जैसे द्वारका में सब रानियां भी सोचते थे कि कृष्ण हमारी महल में है, मेरे प्रति कृपा करके हर दिन हमारी महल में ही आ रहे हैं, लेकिन भगवान वो एक ही रानी के महल में नहीं जाते, सभी रानियों के महल में एक साथ में जाते थे। जैसे गोपी लोग भी सोचते थे कि एक गोपी जो अक्सर मेरे पास में ही कृष्ण मेरे को बड़े कृपा करके मेरे साथ ही केवल नृत्य कर रहे हैं, लेकिन भगवान एक साथ में सारे गोपियों के साथ में नृत्य करते थे। ये जो भगवान विस्तार किया है एक ही स्वरूप हैं, कोई अपने शरीर में कोई भिन्नता नहीं है, मूल श्री कृष्ण और ये जो विस्तार हुए स्वयं को विस्तारित किए, इनमें कोई अंतर नहीं, इसको कहते प्रकाश विग्रह हैं, इसको प्रकाश कोई अंतर नहीं है, एक ही जैसे देखते हैं, एग्जैक्ट कृष्ण सेम। लेकिन रूप गोस्वामी कहते भक्ति रसाम सिंधु में राधारानी के साथ जो कृष्ण थे वो 100%, और सब गोपियों के साथ में जो कृष्ण घूमते थे वो कृष्ण का ही विस्तार थे सबके साथ, ये 95%, 5% कम थे किससे, ओरिजिनल कृष्ण से। वो तो बाहर रहे, हम लोग वो तथ्य के अनुजाई वो बोल रहे हैं, लेकिन बाहर से देखने में एग्जैक्ट कृष्ण। तो इसको कहते हैं प्रकाश विग्रह है, इसको प्रकाश भगवान जैसे प्रकार विस्तारित करते हैं, इसको क्या कहते हैं प्रकाश, प्रकाश विग्रह, भगवान के विस्तार एग्जैक्ट कृष्ण जैसे, कोई फर्क नहीं है। लेकिन दूसरे कहते कि दूसरा क्या है विलास है, एक तो प्रकाश, एक तो प्रकाश है आर तो विलास, तो दूसरे जो प्रकार के जो भगवान स्वयं अपनी लीला में स्वयं को विस्तारित करते हैं लीला को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसको कहते हैं विलास। भगवान कभी कभी लीला में अपने प्रकाश के रूप में स्वयं को विस्तारित करते हैं, जो एग्जैक्ट कृष्ण जैसे हैं कोई फर्क नहीं है उसमें, कृष्ण में और विग्रह में, विस्तारित विग्रह में कोई फर्क नहीं है, समान रूप गुण वाले एग्जैक्ट दिखाई पड़ते हैं, तो वो उनको प्रकाश विग्रह कहते हैं। लेकिन कभी कभी देखते कि शक्ति सामर्थ्य और गुणों का लीला का कार्य में सब एक जैसे हैं, लेकिन स्वरूप में अलग है। अपने शरीर जो अंग कांति में, शरीर का रंग में, बार शरीर का जैसे हस्त पादों में बा अन्य अन्य अंग में कुछ भिन्नता दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर इसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं स्वयं कृष्णदास का प्रभुपाद जी भी दिए हैं, कृष्णदास कविराज भी कहते कि तो वो है कौन सा बलराम, भगवान श्री कृष्ण के सबसे पहला विलास विग्रह कौन है, बलराम, जो कृष्ण का ही पहला विस्तार है। कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है, केवल ये गोरे हैं बलराम और सांवले हैं, पूरे काला नहीं है। जैसे ब्लैक मार्बल दिख रहे हमारे मंदिर में विग्रह, ऐसे पूरे काला नहीं है कृष्ण, कृष्ण तमाल श्यामल है, ऐसे कहते नवघन श्याम ऐसे कहते बस। तो कृष्ण थोड़े सांवले होते हैं दोनों भाई, लेकिन देख के और सब कुछ सेम है, देखने में एग्जैक्ट है, केवल कलर का फर्क है, दोनों का रंग में फर्क है। और एक बलराम का ही विस्तार, बलराम का भी गोपियां कृष्ण रास रचाते तो बलराम भी रास रचाते हैं, है? जय राम घाट जय रोहिणी नंदन है, भगवान श्री कृष्ण का रासस्थलीय वृंदावन है, बगोलो गोवर्धन के तलहटी में चंद्र सरोवर के आसपास में भगवान यहाँ से रास रचाते थे। जब गोवर्धन परिक्रमा करोगे देखो गोविंदन का, गोविंद कुंड आगे क्रॉस कर जाओगे अंदर के जो जाते हो वो गोवर्धन के ऊपर मंदिर देखोगे ऊपर में, हैं पूछोगे ये कौन सा मंदिर है, हैं लुक लुक दाऊ जी, हैं लुक लुक दाऊ जी के मंदिर है, वहां तो हम लोग नहीं जाते लेकिन जो ब्रजवासी जाते हैं, चरण चिन्ह है किसका, दाऊ जी के चरण चिन्ह है, चरण बहुत सुंदर चरण चिन्ह, मैं देखा वो चरण चिन्ह को, लेकिन उस समय मैं इसका में नहीं था, फास्ट आया था तो ब्रज में परिक्रमा करता, सब ब्रजवासी चढ़ रहे थे, मैं भी चढ़ गया और देखा वहाँ चरण चिन्ह, बहुत सुंदर चरण चिन्ह है बलराम जी के। बलराम जी ने वहाँ खड़ा होकर देख रहे थे भगवान श्री कृष्ण चंद्र सरोवर में रास रचा रहे थे, बसंत रास, बलराम वहाँ खड़ा होकर देख रहे थे सुख के कन्हैया का रास, इसलिए कहते लुक लुक दाऊ जी हैं। लेकिन बलराम जी का भी रासस्थली है, वो है रामघाट, हैं रामघाट की जो एरिया है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, बलराम जी उसी एरिया में रास रचाते हैं। कृष्ण की गोपियाँ बलराम की गोपियाँ अलग है, सेम गोपियों के साथ जिस गोपियों के साथ में भगवान श्री कृष्ण रास रचाते हैं, माधुरी जो संपर्क रहता है कृष्ण का, तो वो गोपियाँ बलराम को दाऊ जी बोलते हैं, बलराम जी को सम्मानित करते हैं, साख्य रस में रहते हैं उनके, कृष्ण के बलराम के साथ उनकी कुछ माधुर्य लीला नहीं होता है, वो कृष्ण की गोपियाँ हैं। जो लोग बलराम के साथ जो गोपियाँ माधुर्य रस में रहते हैं वो कृष्ण के साथ साख्य भाव रखते हैं। इसलिए बलराम जी की पूर्णानंदा नाम की गोपियाँ बलराम जी की, जैसे मैंने कृष्ण के जो मुख्य रास में जो मुख्य जो प्रेमिका है राधा रानी है, वैसे बलराम जी के जो प्रेमिका मुख्य प्रेमिका है वो है ब्रज में पूर्णानंदा है। बलराम जब देखोगे दाऊजी मंदिर जो है इधर दाऊजी में, वहाँ पर दाऊजी के साथ रेवती नहीं है, रेवती उधर खड़ा होकर एक साइड में खड़ा होकर बलराम को सौंदर्य को देख रहा हो, शादी नहीं हुआ उस समय है, शादी जाएगी तो द्वारका में हुआ, लेकिन भगवान बलराम ब्रज में जो रास रचाते थे गोपियों के साथ, वो रामघाट के एरिया जो है वो रामघाट बलराम की रास के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए कृष्ण बलराम में कोई अंतर नहीं, केवल सब जो सब कार्य बलराम कृष्ण करते हैं बलराम भी सब कुछ करते हैं, सोई सब लीला उनकी लीला में भी दिखाई पड़ता है। शक्ति सामर्थ्य सब कुछ समान है, केवल रंग में फर्क है, अलग है, देखने में अलग है, हैं ये सांवले ये गोरे, लेकिन दोनों में कौन ज्यादा शक्तिशाली है बोलो, कृष्ण बलराम में ज्यादा शक्ति किसका होगा, हैं? प्रभुपाद जी ने एक बार अपने शिष्यों को पूछा कृष्ण और बलराम में दोनों में कौन कौन ज्यादा शक्तिमान है, कोई बलराम का कोई दाऊ जी है बड़े भाई है कोई कई का बोलते रहे, लेकिन है कृष्ण को डांटने बलराम डांटते ना है दाऊ जी है, जसोदा मैया जब भी कन्हैया को छोड़ती थी गोचारण के लिए बाबा जंगल में बोलते, ए बलराम तुम्हारी भरसा में छोड़ रहा हूँ, इसको पूरा नजर रखना है, संभालना इसको, कंट्रोल में रखना, बोला चिंता मत करो मैं इसको पूरा संभाल लूंगा है। तो लेकिन बलराम जी देखे, प्रभुपाद जी ने बात में देखे, बोले कि आप देख नहीं किसका तड़प कौन ढला हुआ है, हैं कृष्ण की तड़प को थोड़ा बलराम ढले हुए हैं, हाथ ऐसा रखे, थोड़ा ढड़ के ऐसा हाथ रखे हैं। बोले कृष्ण के ऊपर, कृष्ण से ही बलराम विस्तारित हुए हैं। अहम एवास्य व्याग्र नान्यत यत सत असत पराम पश्चात हम ये तथास्त्र जो वैशिष्यत सो अस्मि हम, पीछे श्लोक में पढ़े आप हैं। तो भगवान एक रहे ही एकला ईश्वर कृष्ण आर सब नृत्य जारे जैसे नचाए से तैसे करे नृत्य। तो एकला ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ही है, बलराम भी अपने को दास रूप में मानते हैं, चैतन्य दास स्वामी चैतन्य दास कौन कहते नित्यानंद प्रभु बलराम, वही भी बलराम है। ब्रजेंद्र नंदन जी सचिश्रुत हो सही बलराम हो निताय है। तो ऐसे बलराम जो इनके पहला विस्तार है, लेकिन फिर भी वो अपने दास अभिमान रखते हैं है? वो नहीं कहते कि मैं कृष्ण के समान हूँ। कभी कभी लाल में बड़े भाई के जदि रोल करते हैं, साख्य रस में बात्सल्य मिश्रित साख्य रस में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो जानते हैं, सतर्क रहते हैं, जानते ही मैं कृष्ण का दास हूँ है। चैतन्य वो विशेष रूप में जब दुर्योधन का लड़की जो था, दुर्योधन की कन्या कौन, लक्ष्मणा सांब की, सांब को हरण करने, सांब ने हरण कर लिया था लक्ष्मण को, बंदी बना लिए थे कौरव लोग, मेडिटर बन के ये गए थे कौन, बलराम जी। बलराम जी ने इनको कहे कि इनको शादी करा दो, दोनों को शादी करके अब मेरे पास लेके आओ। तो लोगों गुस्से को कहे थे, बलराम जी ने तभी गुस्सा होकर अपने हड़ को बढ़ाया है, पर हस्तिनापुर को ऐसे ही दाग लगा दिए हाँ, कहे कि अभी उठाऊंगा इसको, उठा के पूरा फेंक दूंगा, कहाँ गंगा में, ये हस्तिनापुर रहेगा ना इनका घमंड रहेगा है। तो हस्तिनापुर को ऐसे खाली लंगर लगा दो, कंपनी लगा, भूकंप आ गया, सब गिरने लगा बिल्डिंग सब, तो सब आके चरण में गिरे, किसके चरण में, उस समय बलराम कहते हैं बोले मूर्खों, कृष्ण सोचते कि कृष्ण को द्वारकाधीश बनने के ये लोग का कृपा से कृष्ण द्वारकाधीश बना है, क्षत्रिय और मुकुट धारण करने के लिए कृष्ण को अधिकार नहीं है, इनकी कृपा से वो क्षत्रिय मुकुट धारण किया है, ये मूर्खों को आज दिखाता हूँ। बोले जिनकी चरण कमल के दास के रूप में मैं स्वयं को अभिमान रखता हूँ, मैं स्वयं जिनकी दासों के दास रूप में अपने को मानता हूँ, और ये मूर्खों को हरे कि वो कृष्ण को द्वारकाधीश बनने का अधिकार नहीं था, इनकी कृपा से वो द्वारकाधीश बना, ये दुनिया के मालिक सोच रहे अपने को, अभी दिखाता हूँ। इसलिए बलराम सब समय के कैसे अभिमान रखते हैं, दास के अभिमान, कहते कि मैं कृष्ण के दास अभिमान, भगवान का पहला विस्तार है बलराम है। और उनकी उदाहरण देते हुए आगे वो कहते कि भी नारायण के चक्रवर्ती, नारायण भी भगवान का ही विलास विग्रह है, ये भी विलास विग्रह है, ये किसके अवतार, ये तो बलराम पहला विलास है, बलराम का ही विस्तार है कौन, प्रभुपाद लिखते हैं बलराम की विस्तार है नारायण है, ये बलराम के विस्तार जो नारायण है, ये भी कितने हाथ है इनकी है, चतुर्भुज है, वासुदेव, जिस प्रकार द्वारका में वासुदेव कृष्ण है, कभी दो भुज कभी चार भुज है, कभी के चार भुज हो जाते हैं, कभी के दो भुज, लेकिन भगवान कौन है, ब्रजेंद्र नंदन है, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण वो है स्वयं भगवान। चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा यही है, महाप्रभु कहते कि ब्रजेंद्र नंदन आराध्य भगवान ब्रजे सतमय तद्धाम वृंदावनम है, स्वयं कृष्ण स्वयं भगवान है, और उनका ही विस्तार के रूप में वासुदेव है, वासुदेव कृष्ण कभी दो भुज रहते हैं और कभी चार भुज हो जाते हैं, ये कृष्ण जैसे देखते हैं देखने में है, लेकिन कभी कभी वासुदेव के रूप में देखते हैं, लेकिन बांसुरी उनके हाथ में बांसुरी नहीं होता है, कृष्ण और नारायण के बीच में भक्ति शांत में चार फर्क बताता है, यदि नारायण को भी भगवान कहा जाता है, लेकिन नारायण के से भी चार कड़ा अधिक है, किन के पास, कृष्ण के पास में है, ये 60 कड़ा में है, वो 64 कड़ा में है, उनके रूप माधुरी बचपन मने जो कृष्ण के और उनकी वेणु माधुरी, उनकी बांसुरी और उनकी बचपन की लीलाएं हैं लीला माधुरी और उनकी परकिया रस में माधुर्य लीला, ये चारों कृष्ण के पास में है, ये नारायण के पास में नहीं है। नारायण यदि और सब गुण में माने जाते कृष्ण जैसे, लेकिन सात गुण तो एग्जैक्ट है, लेकिन चार गुण कृष्ण के पास में अधिक रहता है। ब्रजेंद्र नंदन के पास में चारों गुण अधिक है, है? वो बांसुरी बजा के तीनों सबको आकर्षित, बांसुरी के माध्यम से कुछ भी कर सकते हो, है? अस्त्र शस्त्र धारण करके जो सब कुछ नहीं कर पाओगे वो बांसुरी बजा के सब कुछ कर लेंगे। बांसुरी दप इनकी बांसुरी, इनके असमर्थ सौंदर्यता, इनकी बचपन की जो नटखट माखन चोरी आदि नटखट लाए, है? मैंने ही माखन खाया, मैंने ही माखन माखन खाया कन्या, नहीं मैंने ही माखन खाया। फिर जब फिर कहे, फिर कभी कभी जसोदा की गले पकड़े, मैया मैंने ही माखन खाया, मैंने ही माखन खाया, मैंने ही। झूठ को सच, सत को झूठ बोलने वाले हैं, ऐसे जो लीला है। तो इसलिए नारायण जो ये भी भगवान के विलास माने जाते हैं, है? भगवान के प्रकाश के रूप में तो कृष्ण एग्जैक्ट जैसे रासलीला रानियों के साथ में जो द्वारका में लीला किए उस प्रकाश लीला, प्रकाश विग्रह है, और विलास विग्रह है के रूप में सबसे पहला विलास विस्तार है भगवान का बलराम। इसके साथ साथ उन्हें उदाहरण देने बड़ा, इनकी भी उदाहरण देते किसका, हाँ नारायण का। नारायण जो नारायण भी भगवान श्री कृष्ण का ही विलास विग्रह है। तो कभी कभी प्रभुपाद जी ने कहा करते थे कृष्ण और नारायण में क्या अंतर है, कोई पूछता है, ये भी तो मुक्ति देते हैं नारायण भी, तो कृष्ण में क्या फर्क है, कृष्ण और नारायण में क्या अंतर है। प्रभुपाद जी कहते थे कि जैसे कोई व्यक्ति घर में रहता है और ऑफिस में रहता है, ऑफिस में बैठने वाला वो कौन है, नारायण है। यह ऑफिशियल रिलेशन है, फॉर्मेलिटी रिलेशन। और घर में तो वही नारायण, जो घर में आया तो वो है कृष्ण, घर में तो वही बच्चा कांध में चढ़ेगा, पिताजी के कांध में चढ़ेगा, उन पिताजी के साथ में कोई थप्पड़ लगा देता होगा, कोई उसको खा के आधा झूठा खिला देता होगा, हैं? लेकिन ऑफिस में वो काम नहीं कर सकता, हैं? ऑफिस में देगी थोड़ी बच्चे देगी खेल सकता, नहीं नहीं होगा, फॉर्मेलिटी। इसलिए नारायण ये कहते कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि नारायण इनके विलास विग्रह है, किसका, कृष्ण का। आप लोग में कितने अपने वैकुंठ में बड़ा ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य कोई कृष्ण में नहीं, लेकिन वृंदावन में कृष्ण के पास में इतना ऐश्वर्य दिखाई नहीं पड़ता है, बाहर का ऐश्वर्य नहीं दिखाई पड़ता है। तो ग्वाल गाय चराने वाला है, बचपन से ही छोटे बच्चे जब थे तो बछड़े के पुच्छे को पकड़ के बछड़े के पीछे गोबर में ही गोमूत्र में ही लथपथ होकर भागते थे, उसी में आनंद उनका है। गोमूत्र में गोमूत्र और गोबर में ऐसे ही लथपथ होने में कृष्ण को बड़ा आनंद आता है, हैं? नारायण ऐसा होंगे नहीं, हैं? कोई कहते अरे गोसा आप ये थोड़ी है, गोबर में गोमूत्र में थोड़ी हमको लथपथ होना है, हैं? साधारण कोई सोच नहीं बाहर देख, लेकिन फिर भी भगवान के धाम कैसे कहते हैं ब्रह्म संहिता में, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्ष्यावृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। हैं? अरे वैकुंठ में तो एक ही लक्ष्मी रहता, नारायण के पास में एक ही लक्ष्मी रहता है, ये जितने गोपियां कृष्ण के साथ भटकते ही ये सारे लक्ष्मियां हैं, लक्ष्मी सहस्र। जो वृक्ष है कब वृंदावन के, वो सब ऑर्डिनरी वृक्ष नहीं है, क्या वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, सब कुछ दे सकते हैं। ये जो वृंदावन की जो भूमि है ये कैसा है, चिंतामणि पत्थर में बना हुआ, चिंतामणि है। एक बार अकबर ने आया था, कहाँ वृंदावन आया था, ऐसे बीरबल लेके आया था उनको अकबर को, क्योंकि अकबर के पास दरबार में एक संगीतज्ञ रहते थे तानसेन, वो तानसेन जो तो थे तो वो हरिदास एक महान कवि थे जो उन्होंने बांकी बिहारी को प्रकट किए हैं, तो उनका शिष्य था वो, उनका उनसे वो म्यूजिक सीखा था तानसेन। और इसे सर वृंदावन के गोस्वामी के बारे में बहुत सुना था तो इसलिए आए थे। तो सनातन रूप आदि और ये सब गोस्वामी लोग ने एकत्रित हुए, अकबर जी ने कहा कि मेरे लिए कोई सेवा बताओ, कुछ सेवा बताओ, बड़ा घमंड था, मैं पूरा भारत का सम्राट हूँ, अफगानिस्तान ये सब था उस समय, था उसके अंडर में। तो बोला कि मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ, कुछ सेवा बताओ बताओ, कुछ सेवा बताओ। तो उस समय लोग देखिए कैसे बहुत घमंड है इसको है। तो उसको लेके गए जमुना किनारे कैसी घाट में, जो सीढ़ी है पाउच नीचे देखे कि सीढ़ी का एक साइड तोड़ा हुआ है, है? लेकिन गोस्वामी लोग ने इनको दिव्य चक्षु दिए थे, इसकी कृपा करके इसको दिव्य चक्षु दिए। किसको? अकबर को। कहे कि ये जो सीढ़ी का नीचे, सीढ़ी का पाउच नीचे जो इसका, इसको रिपेयरिंग कर देना। तो अकबर जब वो सीढ़ी को देख रहा था नीचे, वो देख रहा था वो सीढ़ी किसमें बना हुआ है, चिंतामणि पत्थर में चमक रहा है। वो समझ गया मेरे जितना ट्रेजरी है सारा ट्रेजरी को बेच देने से भी इतने इसको मैं रिपेयरिंग नहीं कर सकता हूँ। इसलिए वृंदावन धाम को ऐसे ही चरण चक्की में लोग नहीं देख सकते हैं। अब वृंदावन को देखने के लिए आपको दिव्य दृष्टि होना चाहिए। हाँ, नाहन प्रकाश सर्वस्य जोग माया समावृत है। हाँ? जोग माया की पर्दा डाला हुआ है, हम असली वृंदावन थोड़ी हमको देख रहे हैं। हाँ? पर्दा के पीछे रह के हम ऐसे ही कुछ देख रहे हैं, स्क्रीन में रखा हुआ। जब ऐसे स्क्रीन को देख के कहते कि ये सीखे है। तो इसीलिए ये वृंदावन है, तो इसलिए कृष्ण के धाम वृंदावन। और इस तरह बाहर नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन ये वैकुंठ के सर्जे से भी अधिक ऐश्वर्यशाली है। यहाँ के वृक्ष कैसे हैं, कल्प वृक्ष है, कुछ भी दे सकते हैं आपके, कोई भी इच्छा पूर्ण हो सके। इसलिए वृंदावन में वास करने वाला सतर्क में रहो है। यहाँ पर गलत इच्छा कभी मन में नहीं लाना है। आप यदि वृक्ष के नीचे बैठ कर कहोगे वृंदावन तो वन है जंगल है, इसी तरह शेर भी तो होता होगा, शेर ही पकड़ हो जाएगा है? आप जो सोचोगे शेर इधर ही होगा, शेर पकड़ होगा मुझे खा जाएगा ना क्या, सतकुछ सत बाहर निकल के खाएगा है। अर्थात वृंदावन प्रकट होकर वृंदावन में आके जो बैठ के सोचोगे माया यहाँ पर मुझे, यहाँ भी माया मुझे, माया यदि सोचोगे मुझे माया ग्रस्त करेगा ना क्या, माया ग्रस्त कर लेगा है। तो वृंदावन में रहकर कृष्ण को ही चिंतन करना है। राधा कृष्ण की लीलाओं की है, राधा कृष्ण प्राण मरो जुगल किशोर है। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर है। बहुत सुंदर गीत है। तो वृंदावन को इसी दृष्टि में देखना है, कृष्ण का धाम है। अब वैकुंठ ऐश्वर्य दिखाई पड़ता है, ऐश्वर्य का धाम है, लेकिन वहाँ पर माधुर्य है नहीं है। कृष्ण के साथ में आप नहीं चल सकते, कृष्ण के साथ में दास्य रस के अलावा दूसरे आगे आगे नहीं बढ़ सकते हो है। दास्य के रस की बात में जो है साख्य वात्सल्य माधुर्य विशेष में पर क्या माधुर्य है, ये सब रस का आस्वादन कहाँ नहीं हो सकता है, वैकुंठ में नारायण के साथ ये सब रस नहीं होगा, ये केवल कृष्ण, कृष्ण सभी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं है। तो इसलिए आप किसको चाहते, कृष्ण को चाहते कि नारायण को चाहते हो, कृष्ण भक्ति करो है। कृष्ण भक्ति ही सर्वोत्तम है, है? राम का भक्ति करना से भी इतना नहीं है। राम की भक्ति तो कर, वो राम को प्राप्त करना चाहता था कौन, सुपर्णरेखा, रावण का बहना था ना, बहन था ना सुपर्णरेखा। राम का सुंदर देखकर मुखी मोहित मुही हो गया। राम जी का तो शादी नहीं की, बोलते मेरा पास पत्नी है, अच्छा छोटा भाई के पास भेज दिया, राव लक्ष्मण के पास, लक्ष्मण नाक काट काट के छोड़ दिया है। लेकिन वही सुपर्णरेखा आई कुब्जा के रूप में कृष्णगढ़ा में। भगवान श्री कृष्ण जब कुबड़ी थी, भगवान ने मजाक करके उसके कुबड़ी को ऐसे ही क्या अंगूठा को पैर में कहीं के उसको चंदन लगा, कंस का चंदन लगाने के लिए जा रहा था। भगवान ने बोले उसको बोले कि मजाक को बोले कि वो कुबड़ी है, देखने में उसको कदर्ज थी, लेकिन भगवान को अरे तुम तो बड़ा सुंदरी दिख रही हो है, तुम तो बड़ा लग रहा है जैसे मिस यूनिवर्स है। उसको ऐसा प्रशंसा कर दिया। तो वो बोला अरे मुझे कोई ऐसा नहीं बोला, तुम इतने बोले सुंदर मुझे बोला है। और भगवान ने कहे कि इतना नहीं कहे, उसके अंगूठा के ऊपर पैर रखे और थुबड़ी को ऐसे ही करके ऊपर को उठा दिए, इसका कुबड़ ठीक हो गया एकदम, बहुत अनन्य सुंदरी बन गई है। तो सुंदरी जब बन गई तो कपड़ा पकड़ ली, किसका, कृष्ण का, कृष्ण कपड़ा पकड़ के चलो मेरे घर, कृष्ण को पकड़े ही बड़ा भाई है, है? अभी नहीं आऊँगा, आऊँगा तुम्हारे इच्छा पूर्ण, चिंता मत करो, मैं राम नहीं हूँ, मिल्ला पुरुष हो तुम हो, आए कंस को वध करके गए उसका घर में, किसका घर में, कुब्जा के घर में गए हैं। कृष्ण बड़े मस्ती में रहते हैं, जो भी जो चाहता है सभी का सभी इच्छा पूर्ण करने वाले हैं, कौन श्री कृष्ण। ये लीला करने में लीला पुरुषोत्तम है, मर्यादा लंघन भी करते हैं अपने भक्तों के लिए, मर्यादा भी लंघन कर देते, कुछ भी नहीं कुछ भी कर सकते हैं भक्तों के लिए, सभी की इच्छा पूर्ण करने में समर्थ है। इसलिए ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, और ये लीला में जब इस तरफ आते हैं तो ये दो रूप में आते हैं, कृष्णदास कबीर जी को स्वयं कहते हैं कि दो रूप में आते हैं, एक है विलास ने एक प्रकाश और दूसरा विलास। प्रकाश कैसे ने एक जट आते भगवान, एक जट सेम रूप में, लेकिन पीछे बहुत रूप सेम जैसे दिखाई पड़ते हैं, हैं? तो उदाहरण प्रस्तुत करते कि रास में जैसे महारास रचा है भगवान ने, जितने के गोपी इतनी कृष्ण थे लेकिन एग्जैक्ट शुभ थे, कृष्ण एक ही जैसे थे, इसमें कोई भेद नहीं, कोई पहचान नहीं सकता कौन ओरिजिनल कृष्ण है कौन सा है, पहचानने का किसका हिम्मत नहीं, केवल पहचान सकता कैसे राधारानी के सहारा में, वो जान सकता कि राधारानी के बाजू में जो रहते वो निश्चित रूप में स्वयं कृष्ण है, भगवान कभी भी राधा रानी को छोड़ते नहीं है। यदि भी ये मदन मोहन है, राधा रानी कौन है, मदन मोहन मोहिनी है, राधा रानी के विच्छेद कभी भी सहन नहीं कर सकते भगवान है, तो इसलिए नहीं तो तुम पहचान नहीं सकते। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण दिया गया प्रकाश का, किसका, द्वारका में 16,160 रानियों के बीच में भगवान किस प्रकार रहते थे, स्वयं को विस्तारित करके 16,160 रूप में वो लीलाओं को प्रकाश करते थे, कहा द्वारकापुरी में। ये दोनों उदाहरण दी गई है, प्रकाश रूप में कैसे भगवान अपनी लीला करते हैं, और विलास के रूप में फिर दूसरा जो लीला करते हैं विलास रूप में, विलास का उदाहरण कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहे कि इनके विलास विग्रह में सबसे पहला है कौन, बलराम, इनका पहला विस्तार है, और बलराम बलराम से फिर विस्तारित होते कौन, नारायण, ये भी इनके विलास विग्रह माना जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के विलास विग्रह है बलराम तथा नारायण है। तो इस प्रकार संक्षेप में बताया हमें जो समय के आधार पर आपको, तो कोई किसके प्रश्न है, किसी का कोई प्रश्न है, हाँ कोई प्रश्न नहीं, महाप्रसाद टाइम हो गए हैं, हाँ क्या सुनाई नहीं पड़ रहा जोर से, माइक कहाँ है, हाथ पकड़े वो प्रश्न पूछ रहा, आप हाथ पकड़े बैठे, ब्रह्म विमान लीला में हाँ भगवान ने विस्तारित किए, ब्रह्म विमान लीला में भगवान ने अपने को विस्तारित किए थे, वो कौन सा लीला हुआ, हाँ वो विलास है, वो प्रकाश नहीं है, भगवान एग्जैक्ट जैसे नहीं बनाया, हमने इसको विस्तारित किए थे तो उनके बाद देखे नहीं कुछ, किस रूप में देखे, ब्रह्मा जी ने देखे से ग्वाल बाल बछड़े सब फिर कैसे हो गए, चार भुज वाले शंकर चक्र गदा पद्म धारण करके सबको ब्रह्मा जी को दर्शन दिए हैं, ठीक है ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री चैतन्य चैतामृतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा।